माधव जी, आप तैयार हो गए हो तो इसे देखिए, कब से तंग कर रहा है मुझे। ऐसे करेगा तो मैं रेडी कैसे होंगी? सब आ चुके हैं पर मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। राधिका परेशान सी कमरे में दाखिल हुई। उसकी बाहों में उनका एक साल का बेटा राघव था, जो गला फाड़कर रो रहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा माधव उसकी आवाज़ सुनते ही उस ओर पलट गया। इतना क्यों रो रहा है? दूध पिलाया आपने इसे? कहीं भूख से तो नहीं रो रहा? दूध तो ले ही नहीं रहा। डायपर चेक किया, गिन से भी रोने लगता है। बोलते हुए माधव ने उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। जवाब में परेशान राधिका ने फिर इनकार कर दिया। नहीं, कुछ नहीं किया है, सबसे पहले डायपर ही चेक किया था। इधर दिखाइए, मैं चुप करवा कर देखता हूँ। माधव ने जैसे ही राघव को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, नन्हा राघव पप्पा पप्पा बोलते हुए उसकी ओर लपक गया। एक साल का हो गया था वो। घुटने पर चलकर पूरे घर में दौड़ पड़ता था, सहारा लेकर खड़ा भी होता था और सहारे से ही एक दो कदम चलता, फिर शरारत दिखाते हुए बैठकर अपने जबड़े और आगे के दो चूहे जैसे दांत चमकाने लगता। अपनी भाषा में काफ़ी कुछ कहता था और बहुत सिखाने पर अब अपनी टूटी फूटी तोतली भाषा में अपने मम्मी पापा को भी पुकारता था। जन्म से ही हेल्दी था और अब भी गोल मटोल क्यूट सा दिखता था। माधव ने जैसे ही राघव को अपनी गोद में लिया, राघव खिजलाते हुए अपने कपड़ों को ऐसे अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से नोचने लगा जैसे कपड़े उतारकर फेंकना चाहता हो। उसकी इस हरकत को देखकर माधव मुस्कुरा दिया। तो आपको इन नए कपड़ों में इरिटेशन हो रही है, इसलिए इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं? अब आप कहीं सच में उसके कपड़े खोल ही मत दीजिएगा, बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनाकर तैयार किया है मैंने उसे। राधिका की खींची हुई आवाज़ माधव के कानों से टकराई तो नज़र उसकी ओर मुड़ी। दूसरे कपड़े पहना देता हूँ ना मैं इसे, ये सुझाव दिया था उसने, जिसे राधिका ने सख्ती से ठुकरा दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, और कौन सा वो दूसरे कपड़े आराम से पहन लेगा? जानते नहीं आपके बेटे को नंगू पंगू रहने का शौक है? कपड़े तो जैसे उसके शरीर को काटने को दौड़ते हैं, पहनाओ तो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रोता है जैसे कितना अत्याचार किया जा रहा हो उस पर, और नंगा छोड़ दो तो बड़ा खुश। अजीब थी पर यही आदत थी राघव की। छोटा था पर बड़ा शैतान था, बहुत तंग करता था, न कपड़े पहनने देता न आराम से खाना खाता। राधिका उसकी शरारतों से परेशान थी, उस पर उसके नाना और दादी ने अपने लाडले को सर पर चढ़ा रखा था। राधिका की बात सुनकर माधव ने राघव को देखा, जो अब भी अपने कपड़ों को उतारने की कोशिश करते हुए मुँह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। मैं इसे बाहर से घुमा कर लेकर आता हूँ, शांत हो जाएगा, तब तक आप तैयार हो जाइए, निकलने का टाइम होने वाला है। राधिका ने सर हिलाया तो माधव राघव को पुचकारते हुए लेकर कमरे से बाहर चला गया। राधिका ने चैन की सांस ली, अपनी बिखरी हुई हालत देखी और जल्दी जल्दी से तैयार होने लगी। राधिका तय कमरे में दाखिल होते हुए माधव ने राधिका को पुकारा, पर जैसे ही राधिका उसकी ओर पलटी, उसके आगे के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए और आंखें सामान्य से ज्यादा फैल गईं। पल भर को सांसें थमी और बेचैन दिल की धड़कनें शोर करने लगीं। राधिका ने जब उसे यूं खुद को देखता पाया तो नज़रें झुकाकर एक बार खुद को देखा, फिर वापस से निगाहें माधव की ओर उठाते हुए उलझन भरे स्वर में सवाल किया, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ठीक नहीं लग रही क्या? कुछ लगा है मेरे चेहरे पर? और भी कई सवाल थे उसके मन में, पर कहती उससे पहले ही माधव की सर्द आवाज़ उसके कानों से टकराई। उफ, क्या निखार आया है आपके रूप पर, इस कदर हसीन पड़ रही हैं कि पलके तक झपकने को तैयार नहीं। राधिका पहले तो उसका यह अंदाज देखकर आंखें बड़ी बड़ी करके आश्चर्य से उसे देखने लगी, फिर जब माधव उसके करीब आ गया तो उसने अपनी निगाहों को झुकाते हुए लरसते स्वर में कहा, माधव जी, जाने का टाइम हो रहा है, हमें नीचे चलना चाहिए। राधिका जैसे ही चुप हुई, माधव की गर्म सांसों को अपनी गर्दन और कंधे पर महसूस करते सिहर उठी। राधिका, बेटी की ख्वाहिश अब भी अधूरी है मेरी, माधव ने उसके कान में सरगोशी की और साथ ही राधिका की कमर को थामते हुए उसे खुद से सटा लिया। राधिका की सांसें बहकने लगीं और धड़कनों का शोर वहां गूंज उठा। अपने एहसासों को संयमित करते हुए राधिका ने हल्की नाराजगी से निगाहें उसकी ओर उठाईं और उसके सीने पर अपनी हथेलियों को टिकाते हुए दूरी बना ली। पहले अपने इस नटखट बेटे को संभाल लीजिए, उसके बाद बेटी के ख्वाब देखिएगा। उसे तो इसकी दादी और नानू ही संभाल लेते हैं, मेरे संभालने के लिए आपको एक प्यारी सी बेटी ले आनी चाहिए, उसे सिर्फ मैं संभालूंगा। माधव ने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को समेटना चाहा, पर राधिका ने मुंह बनाते हुए उसका हाथ झटक दिया। रहने दीजिए आप, बड़े आए संभालने वाले, जानते भी हैं आपका बेटा कितना तंग करता है मुझे, मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है उसने, इतना नटखट और शैतान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, बिद्दू सा है पर ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि देखने वाला भी हैरत में पड़ जाए कि ये उसी बच्चे का काम है। दुनिया भर से शरारतें करने के बाद सूरत इतनी मासूम बनाता है कि कोई डांटे तो दया आ जाए उसकी भोली सूरत पर। जितनी देर सोता है बस उतनी ही देर शांत रहता है, वरना सारा दिन तो बस पूरे घर को फैलाता रहता है। मजाल हो तो उसके रहते एक चीज़ अपनी जगह पर रह जाए या शांति से बैठकर मैं कोई काम कर लूँ, मुझे तो एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। खुद अपनी दादी और नानू साथ खेले तब भी मैं उसे अपनी आंखों के सामने ही चाहिए। जो एक मिनट के लिए भी यहाँ से वहाँ हो जाऊँ, रो गला फाड़ कर रोता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, जो मैं घर पर नहीं रहती तो कैसे संभालती मम्मी जी और पापा उस शैतान को। अभी उसे ही हैंडल करने में मेरी हालत खराब हो जाती है, और आपको एक और बच्चा चाहिए, फिर तो दोनों मिलकर पक्का से मुझे पागल कर देंगे। राधिका राघव की हरकतें बताकर शिकायत लगा रही थी, और माधव लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए उसे बड़े ही प्यार से निहार रहा था। राधिका जब अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद चुप हुई तो नजर माधव के मुस्कुराते लबों पर पड़ी और वो बुरी तरह खिलखिला गई। जब भी मैं आपसे आपके बेटे की शिकायत लगाती हूँ ना, आप ऐसे ही मुस्कुराकर मेरे गुस्से को बढ़ाते रहते हैं। मालूम भी है आपको, आपका शैतान बेटा मुझे कितना परेशान करता है। खुद तो आप सुबह रेस्टोरेंट चले जाते हैं तो सीधे रात को घर लौटते हैं, पर आपके पीछे सारा दिन वो कितना तंग करता है मुझे। मैंने तो आपको पहले ही कहा ना राधिका, कि हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए, फिर वो आपको इतना तंग करेगा, अपने आगे पीछे इतना भगाएगा कि आप लकड़ी जैसी पतली हो जाएंगी। हाँ, आपकी ही बात मान रहा है आपका बेटा, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, बस मुझे परेशान करते रहते हैं, मुझे बात ही नहीं करनी किसी से, छोड़िए मुझे। राधिका गुस्से में माधव पर भड़क उठी और उसकी बांह को अपने पेट से हटाने की कोशिश करते हुए उससे छूटने को छटपटाने लगी। माधव ने उसकी कमर पर अपनी बांह की पकड़ कसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और झुककर उसके गाल को अपने लबों से चूमते हुए धीमे स्वर में उसके कान में सरगोशी की। जब आप गुस्से में अपनी नाक को सिकोड़ती हैं, गालों को फुलाकर इन खूबसूरत आंखों को छोटे छोटे करके मुझे घूरती हैं तो और भी दिलकश लगती हैं। राधिका उसके प्यार भरे मीठे मीठे शब्द सुनते ही मोम सी पिघल गई। माधव की नजदीकियां, उसकी बेताब सांसें और जोरों से धड़कता दिल, अपनी सारी नाराजगी और गुस्सा भुलाकर वो उसमें खोसी गई, और राधिका को अपनी बाहों में सिमटते देखकर माधव के लब दिलकशी से मुस्कुरा उठे। दिल्ली से बस चली थी कानपुर के लिए। आज वहां सेलिब्रेशन होना था। अर्पिता ने अपना पहला इंडिपेंडेंट केस लड़ा था, जो कि काफी उलझा हुआ था, और उसने पहली ही हियरिंग में पहले ही केस पर जीत अपने नाम लिख ली थी। आखिर अभिजीत की शिष्या थी, उससे कानून के सारे दावपेंच सीख कर आई थी। उसकी जीत पर अभिजीत ने खुद फोन करके बधाई दी थी उसे।
उसी खुशी में शामिल होने दिल्ली से सब कानपुर जा रहे थे, जिसमें आहाना, अंतरा संग, पूरा सहगल परिवार मौजूद था। फलक भी सुमित और दीप्ति संग आए थे। शिखा और निशा भी अपने पति संग आए थे। शिखा प्रेग्नेंट थी और निशा का बेटा उनके साथ था। बुलाया तो कविता को भी था, पर उसने इनकार कर दिया। राधिका के अलावा उसकी दोनों बहनें भी अपने पति और बच्चों संग आए थे। सारे बच्चों ने मिलकर बस में तूफान मचाया हुआ था। इतना शोर कर रहे थे कि माधव की गोद में सोया राघव बार बार उड़ जाता, फिर खींचकर चिल्लाने लगता। बच्चे उसे ही ज्यादा तंग कर रहे थे, उसके साथ खेलने को बेताब थे, पर राघव बाहर आते ही सो जाता था। आदत थी उसकी, बाहर आता ज्यादा भीड़ या अनजान चेहरों को देखता तो सो जाता था। बड़े बुजुर्ग आगे बैठे बातें कर रहे थे। लड़कों को बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर सारी लड़कियां पीछे की सीट पर फैलकर बैठी गप्पे लड़ा रही थीं। ऐसे मौके कम मिलते थे उन्हें, जब सब साथ होती, और अब जब मौका था तो सब उसका खुलकर फायदा भी उठा रही थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्पिता की इस कामयाबी पर उसकी बहनों का जाना तो ठीक है, शिखा भी उसकी दोस्त है तो उसे न भूलना भी ठीक है, पर निशा और कविता को क्यों बुलाया गया? तो मैं बता दूं कि राधिका की शादी के बाद से उसकी बहनों के लिए राधिका का ससुराल ही उनका मायका बन चुका था। अनुपमा जी ने कभी अपनी बेटियों और राधिका की बहनों में कोई फर्क नहीं किया था। जो मान उस घर की बेटियों को मिला, वही राधिका की बहनों को मिला। मायके की जो रीत अनुपमा जी ने अपनी बेटियों के लिए निभाई, वही राधिका की बहनों के लिए भी निभाई। माँ का फर्ज पूरा किया और कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि उनकी माँ नहीं या मायका नहीं। इस दौरान सब लड़कियों की भी आपस में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई, इसलिए अर्पिता ने अपनी खुशी में उन सबको शामिल किया था। यहाँ सभी कानपुर पहुँचने के लिए निकल चुके हैं और बहुत ही उत्साहित थे, तो वहीं कानपुर में भी आगंतुकों के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, और वहाँ भी सब बेहद खुश और एक्साइटेड नजर आ रहे थे। अप्पू के तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, बड़े दिनों बाद सबसे मिलने वाली थी और खुशी उसके चेहरे पर नूर बनकर बिखरी थी। निशांत और बाकी सब उसकी खुशी में खुश थे, और वो खुशी और बढ़ गई थी क्योंकि आहाना और अंतरा जो आने वाले थे। इस घर की बेटियां थीं दोनों, शादी को कितने साल हो गए थे, पर आज भी घर की बेटी जब घर आती तो सबकी खुशी देखने लायक होती थी। टू बी कंटिन्यूड। कैसा लगा आपको हमारे शैतान राघव से मिलकर?